नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय समुदाय को समर्थन के लिए सराहना की। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अपने 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सरकार ने विभिन्न स्रोतों से देश में किफायती ऊर्जा की उपलब्धता का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को हुए नुकसान की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय ने 6 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और रूसी स्टिल मिसाइलों की खरीद के लिए 5,083 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल के पहले दौर में लक्ष्य सेन ने चीन के मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। श्री मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय को उनके निरंतर समर्थन की सराहना की और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली का आह्वान किया। श्री मोदी ने कुवैत के शहजादे शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने इस दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में कुवैत के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत में कतर के साथ दृढ़ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से भी बातचीत में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार इसराइल तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइली रक्षा बल IDF ने कहा कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसराइल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की ओर से हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
इसराइली रक्षा बलों ने बेरूत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी के मारे जाने की पुष्टि की है। एक अन्य हमले में इसराइल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलत को भी मार गिराया है। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों तथा सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मीडिया ने बहरीन में एक अमरीकी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच इस्लामिक गणराज्य में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने नवीनतम उपग्रह चित्रों की समीक्षा के बाद नतांज स्थित ईरान के परमाणु केंद्र में संरचनात्मक क्षति की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने एक बयान में कहा है कि विकिरण रिसाव के कोई संकेत नहीं मिले हैं और मुख्य भूमिगत संवर्धन संयंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का आह्वान दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि भारत इस संघर्ष के शीघ्र समाप्ति के पक्ष में है। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा तथा कुशल क्षेम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम से भारत अछूता नहीं रह सकता। प्रमुख व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इस पर प्रकाश डालते हुए श्री जायसवाल ने रेखांकित किया कि किसी भी बड़े व्यवधान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक कार्यबल में भारतीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए भारत ने वाणिज्यिक जहाज रानी मर्चेंट शिपिंग पर हमलों का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण हित रखने वाले एक निकट पड़ोसी के रूप में ये घटनाक्रम भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बीच सरकार ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि भारत वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों का 3रा सबसे बड़ा आयातक, 4था सबसे बड़ा शोधक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। देश के पास मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार हैं। ईरान में बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद अधिकांश भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। दूतावास ने कहा कि इन लोगों के परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था कर दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद अन्य भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों से जहां हैं वहीं रहने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग से उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों से अपार अवसर खुले हैं, जिससे भारतीय उद्योग पर उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर देने की नई जिम्मेदारी आ गई है। श्री मोदी बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय था आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना।
भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड, इतना ही नहीं उससे भी बेहतर हो, और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी अध्ययन करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि तीव्र आर्थिक विकास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की आधारशिला है।
आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है, बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 और भारतीय नौसेना के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल की खरीद के 5,083 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और परिचालन उपकरण के लिए 2,901 करोड़ रुपए के अनुबंध पर बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर वर्तमान में संचालित हवाई प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सभी हितधारक मंत्रालयों, प्रमुख रसद और व्यापार सुविधा साझेदारों के साथ एक परामर्श बैठक की। इसमें उभरती भू राजनीतिक स्थिति और भारत के निर्यात तथा आयात पर इसके संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से भेंट की। इस दौरान उपराष्ट्रपति को ग्रामीण विकास और जन कल्याण से संबंधित मंत्रालय की विभिन्न पहलों से अवगत कराया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में इटली के राजदूत अंतोनियो बार्तोली से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भारत इटली सहयोग मजबूत करने, नवाचार साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग पर सार्थक विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रंगों का पावन पर्व होली कल पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के प्रतीक इस त्योहार की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात के श्री कृष्ण मंदिरों में आज होली के अवसर पर फुल डोल महोत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। डाकोर के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर और रणछोड़ राय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव देखने के लिए एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति के साथ आज देवभूमि द्वारका और डाकोर के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में फूल डोल उत्सव मनाया गया। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान को नयनाभिराम फूलों के हिंडोले में विराजित किया गया और श्रद्धालुओं ने अबील गुलाल उड़ाकर रंगोत्सव का आनंद लिया। वही खेड़ा जिले के डाकोर स्थित राजा रणछोड़ राय मंदिर में कालिया ठाकुर जी ने सोने की पिचकारी से भक्तों पर केसरिया रंग के जल की वर्षा कर होली खेली। इस अवसर पर भगवान को मिश्री की चशनी से बने विशेष हारड़ा का श्रृंगार धारण कराया गया और ऋतु की शुरुआत के प्रतीक समान अंगूर, धानी और खजूर का भोग भी लगाया गया। चंद्र ग्रहण और सुरक्षा की पारंपरिक जाली के दर्शन के बीच हजारों भक्तों ने आज भजनों की गूंज के साथ अपने आराध्य के दर्शन किए। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि होली के त्योहार को शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
ब्रज की प्रसिद्ध होली का आनंद उठाने के लिए विदेशी पर्यटकों के साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं। दूसरे जिलों में भी कल होने वाली होली के उत्सव की जबरदस्त तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होने वाले होली समारोह में हिस्सा लेंगे और नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा की भी अगुवाई करेंगे। उधर वाराणसी में कल भोर में होने वाली मंगला आरती में ही बाबा विश्वनाथ को गुलाल अर्पित किया जाएगा और रंगोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। काशी में आज मुस्लिम महिलाओं के एक समूह ने होली मनाकर शांति और प्रेम का संदेश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अट्टुकल पोंगाला के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहार नारी शक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। श्री मोदी ने कामना की कि यह शुभ दिन सभी के जीवन में समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए और समाज में सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा दे। दिल्ली यातायात पुलिस ने होली पर राजधानी में सुचारू यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। अपर पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कल सुबह से शाम तक लगभग 134 प्रमुख चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अब बात खेलों की। बर्मिंगम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने शी यू ची को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। लक्ष्य ने शी यू ची को 23-21, 19-21, 21-17 से मात दी। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स में हु पांगरोन और चेंग सू यिन को हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की, भारतीय समुदाय को समर्थन के लिए सराहना की। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अपने 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सरकार ने विभिन्न स्रोतों से देश में किफायती ऊर्जा की उपलब्धता का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को हुए नुकसान की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय ने 6 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और रूसी स्टील मिसाइलों की खरीद के लिए 5,083 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।